आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या हम स्वतंत्र हैं कि नहीं है। तो मैं आपको एक हमारे पड़ोस की एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है और बड़ा व्यसनी है वो व्यक्ति। शराब, मांस खाना, शराब पीना, तंबाकू, गुटखा आदि खाना। सो आवाज तेज कर। सो उसको बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई आप ये इतनी शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, कुछ तो मतलब सोचो, पाप है ये ऐसा करना। तो बोलता था कि मेरे को इससे ताकत मिलती है, मैं शराब पीता हूँ, तंबाकू खाता हूँ तो मुझे काम करने की ज्यादा शक्ति मिलती है। तो पिछले हफ्ते उसको लकवा मार गया, तो आधा शरीर टेढ़ा हो गया उसका। सो बड़ी मुश्किल से मरते मरते बचा। तो किसी तरह से हॉस्पिटल का टाइम तो उसने निकाल दिया, लेकिन शराब पीने की आदत थोड़ा ना छूट गई उसकी। तो बिस्तर पे पड़ा हुआ है अपने घर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, और बहुत उसको तलब लग रही है शराब पीने के लिए, और सामने अलमारी में शराब की बोतल भी रखी है, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। आवाज मारी लेकिन किसी को बुलाया गया, लकवा मार गया शरीर को। तो खुद ही उठ के ले लेता हूं, तो उठा और चार पाए से उठते ही धड़ाम नीचे गिर गया, सारे कोनिया वोनिया घुटने सारे छिल गए उसके। तो क्या रुक गया, घसीट घसीट के जा रहा है अलमारी की तरफ जिसमें शराब की बोतल रखी हुई है। तो उसकी वाइफ आई देखने के लिए, तो देखा क्या हालत हो रही है उसकी, किताब नीचे मत रखिए। सो उसकी वाइफ ने उसको डांटा, क्या कर रहे हो। उसने बोला अगर तू शराब नहीं मुझे देगी तो मुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, उठ के लेना पड़ेगा। तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप स्वतंत्र मानते हो कि गुलाम मानते हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं शराब पीने के लिए स्वतंत्र हूं, मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा, और पूरा जीवन उसने ऐसे बिता दिया कि मेरी शराब पीने की इच्छा है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं शराब पी लेता हूं। सो प्रश्न ये उठता है कि शराब पीने की जो उसको लग रहा है कि मेरे पास स्वतंत्रता है, तो क्या ये स्वतंत्रता अच्छी है कि खराब है। अगर स्वतंत्रता है तो कोई कुछ भी करेगा क्या, कुछ अपने पे संयम नहीं लगाना चाहिए क्या, ये प्रश्न है। एक मेरा दोस्त है, उसके फादर को कैंसर हो गया, तो अपने पिता को हॉस्पिटल में मिलने गया, वो खुद भी बहुत सिगरेट पीता था, तो वहाँ पे मिलने गया तो वो कैंसर की दवाई, कीमोथेरेपी की दवाई लगी हुई है बाजू में, ड्रिप लगी हुई है, और लोग सिगरेट पी रहे हैं। तो उसने कहा अरे आपको कैंसर है, आप मतलब दवाई चढ़ रही है और आप सिगरेट पी रहे हो। बोले क्या करें, रुका ही नहीं जा रहा। तो उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग किया सिगरेट शराब पीने के लिए, लेकिन अब उनके पास स्वतंत्र इच्छा रही नहीं। तो अगर हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग अगर हम करेंगे, अगर हम उसका हम सोचेंगे हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हमें रोक नहीं सकता, कोई भी हमें टोक नहीं सकता, तो अंत में क्या होगा, वो स्वतंत्रता छिन जाएगी। लगेगा कि स्वतंत्रता है लेकिन वास्तव में वो स्वतंत्रता होगी नहीं, है ना। जब तक वो व्यक्ति शराब नहीं पिएगा, उसको नींद नहीं आएगी, तो किस बात की स्वतंत्रता है ना। सो एक व्यक्ति जो है ऐसे ही, उसको वो सोचता था कि मैं स्वतंत्र हूँ शराब पीने के लिए। तो सो एक बार आधी रात को उसको शराब पीने की इच्छा हुई, तो उसने कहा चलो शराब पीता हूँ। उसने फ्रिज खोला, बोतल देखी, बोतल खाली थी। ये अमेरिका की घटना मैं बता रहा हूँ आपको। बोतल खाली थी, उसने कहा चलो पास जाके वहाँ से ले लेता हूँ। तो वहाँ पर पास की दुकान पर गया शराब लेने के लिए, तो उन्होंने कहा ये वाला ब्रांड नहीं है। तो उसने कहा मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो वही ब्रांड पीऊँगा, नहीं लेता तेरे से, थोड़ा और आगे जाता हूँ। तो गाड़ी चला के एक दूसरी थोड़ी दूर जगह थी, वहाँ पर शराब की बोतल खरीदने चला गया। तो वहाँ से शराब की बोतल मिल गई उसको, शराब की बोतल खरीद के वापसी में बर्फ़ गिरना शुरू हो गई, वो धुंध छा गई। तो ठीक से गाड़ी उसको दिखाई नहीं दे रहा था, तो बर्फ़ पे उसकी गाड़ी फिसल गई और गड्ढे में गिर गया वो, उसकी गाड़ी समेत, और उल्टा लटक गया गाड़ी में। अब वो आवाज़ें मार रहे हैं, कौन सुनेगा, हाईवे के ऊपर लोग 100 की स्पीड पे चल रहे हैं, कोई रुकेगा नहीं। तो उसने बॉटल को देखा, बॉटल भी टूट गई थी सारी, बिखर गई थी उसकी गाड़ी में। तो उसने दूर से देखा कि लोगों के घर की लाइट टिमटिमा रही है ना, बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है, उनकी लाइट टिमटिमाती है। तो उसने सोचा यार लोग अपने घर में मतलब हीटर चला के इतनी ठंड के अंदर आराम से बैठे होंगे, मुझे पता नहीं मैं जिंदा बचूंगा भी नहीं बचूंगा, कोई आएगा बाई चांस देख लेगा तो ही उसको निकालेगा तो जीवन बचेगा, नहीं तो ठंड में हालत खराब हो जाएगी। तो वो उस समय सोच रहा था कि ये कैसी स्वतंत्रता मिल गई मेरे को, नहीं ऐसी ये क्या स्वतंत्रता है कि मैं मतलब बिना शराब पिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो अगर मेरी नींद आना शराब पर निर्भर हो गया तो मैंने तो अपनी स्वतंत्रता बेच दी। और बेचने पर पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसी बेची कि मैं पैसे लुटा रहा हूँ, नहीं। अब मैं अपने पड़ोसी की बात करूँ तो घर वाले पहले ही दुखी थे उससे, उसके लकवा मारने से पहले शराबी व्यसनी आदमी किसको अच्छा लगता है। जो स्त्री है अगर उसका पति व्यसनी है तो वो सहन ही तो करती है, खुश थोड़ी ना होती है, देखो मेरा पति शराब पी रहा है, कोई ऐसी कहती है स्त्री, सहन ही कर रही है। ऊपर से लकवा मार गया उसको, पता नहीं ठीक होगा पूरी तरह से, ठीक होगा नहीं होगा। और जिसको लकवा मार गया, आपने देखा है कोई जिसको लकवा, कितने लोगों ने देखा है लकवे के मरीज को, उसको टट्टी पेशाब भी उसको करवाना पड़ता है, खुद नहीं कर पाता वो, नहीं। और ऐसा व्यक्ति ऐसी हालत में घर वालों को गालियां दे रहा, मुझे शराब नहीं दे रहे। तो ऐसे जो घर के जो स्वामी हैं, मुखिया, जो लकवा मारा हुआ है, लोग सेवा कर रहे हैं एहसान मानने की बात तो दूर, उल्टा गाली गलौज कर रहा है, उसकी कौन सेवा करेगा। तो लोग क्या सोचेंगे कि ये कब मरेगा, जब वो मरेगा तो कितने लोग मुक्त होंगे, वो मरेगा तो वो भी मुक्त होगा और हम भी मुक्त होंगे, ऐसा लोग सोचना शुरू कर देते हैं, नहीं। सो भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है कि हम भगवान का भजन करें या ना करें, हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है हम मंदिर आए या हम किसी मौज मस्ती के इंद्रिय तृप्ति के भोग स्थान पर जाएं, हमारे पास ये इच्छा भगवान ने दी है। लेकिन और भगवान ने भोग के बहुत सारे अवसर भी दिए हैं, बहुत सारे अवसर कह दिए हैं, पूरा भौतिक जगत भगवान ने इस तरह बनाया है कि भोग करो, पूरा भौतिक जगत ही ऐसे बना हुआ है कि भोग करने की सुविधा दे रहा है। और भोग करने की कितनी सुविधाएं दे रहे हैं भगवान, कितनी सुविधाएं दे रहे हैं, हम कल चर्चा कर रहे थे। और भगवान भोग करने की 84 लाख प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, 84 लाख तरह की, किस प्रकार से भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हुई है, नहीं? कि जिस प्रकार से भी आप भोग करने की इच्छा रखते हो भगवान वैसा ही शरीर प्रदान कर देते हैं। जिसको मांस खाने की इच्छा है तो भगवान कहते हैं मांस खाने की इच्छा है नो प्रॉब्लम, आपको अभी बाजार से जाके मांस खरीदना पड़ता है, फिर उसको धो के उसको बहुत देर तक पकाना पड़ता है ताकि गले के नीचे उतर जाए, नहीं, और दुर्गंध होती है, उसमें बहुत सारे मसाले डालने पड़ते हैं ताकि उसकी दुर्गंध खत्म हो जाए, नहीं। सो भगवान कह रहे हैं इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं ऐसी बॉडी दे दूंगा, ऐसा शरीर दे दूंगा अगला, कि आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है मांस, आप जाओ शिकार करो और कच्चा खा जाओ, है ना। कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, भगवान सांप बना देते हैं, जाओ भैया बिना बात के किसी को भी डस लो, सांप का स्वभाव है, नहीं। किसी का मन कर रहा है लोगों का शोषण करने का, उनका खून चूसने का, तो भगवान उसको क्या बना देंगे, क्या बनाएंगे, मच्छर, नहीं। आजकल डेंगू फैला हुआ है, देखो कितने लोग सोच रहे थे खून चूसने के बारे में, नहीं। तो भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई है, मतलब 84 लाख तरह के विभिन्न विधियां हैं भोग करने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए। अब भगवान कह रहे हैं कि आप भोग करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप भोग करते रहोगे तो आप इसी भौतिक जगत में फंसे रहोगे, आप जो है एक ऐसा पेड़ आपने जो है एक बीज बो दिया आपने, जिस पे मीठे फल भी लग रहे हैं कड़वे फल भी लग रहे हैं, अब आप उसको खाते रहो, कभी मीठा फल तोड़ के खा लो कभी कड़वा फल तोड़ के खा लो, आपको बाहर से पता नहीं चलेगा मीठा है कड़वा है, आप तोड़ के जब खाओगे तो ही उसके बारे में पता चलेगा। तो क्या करें, तो भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में कि आप ज्ञान की तलवार से इस वृक्ष को काट दो, क्योंकि जब तक ये वृक्ष जीवित रहेगा तब तक आप अनादि काल से सुख और दुख भोगते आ रहे हो और अनादि काल तक सुख और दुख भोगते रहोगे आप। तो आप ज्ञान की तलवार लो और इससे इस वृक्ष को काट दो। तो वो ज्ञान की तलवार क्या है, क्या अस्त्र प्राप्त करने से, ऐसी क्या विद्या है प्राप्त करने से हम इस वृक्ष को, इस भौतिक आसक्ति रूपी वृक्ष को हम काट सकते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम ठीक हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही यहाँ रहने में, ठीक है, सुख दुख तो चलता रहता है, नहीं सुख आएगा दुख जाएगा, कभी सुख आ रहा है कभी दुख आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया के साथ में ये लगा हुआ है, बहुत डिस्टर्बेंस है। सो प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि चलो हमने इस शरीर का सुख और दुख के साथ हमने सामंजस्य बिठा लिया, लेकिन अभी तो बुढ़ापा भी आना है, नहीं अभी घुटनों में दर्द कहाँ शुरू हुआ है, कईयों के हो भी गए, वो सीढ़ी पे बैठने वाले हैं जो हैं सब, लेकिन आज तो माता जी आगे बैठे। ठीक है, सो अभी ऐसा नहीं है कि हमने सारे दुख देख चुके, अब और क्या दुख हमारे सामने आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, नहीं, और ऐसा भी दुख आ सकता है कि जिसको हो सकता है शारीरिक दुख ना हो, मानसिक दुख हो, नहीं, अगर किसी का बच्चा जो है वो बिगड़ जाए तो वो लंगड़ा होना कहेगा, मैं लंगड़ा हो जाऊं, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, आंख फूट जाए मेरी, मेरा बच्चा सुधर जाए, लोग बोलते हैं ना, नहीं, और लोग कितना ही शारीरिक दुख सहने को तैयार हैं, यहां से मैं पैदल वैष्णो देवी नंगे पैर चल के जाएंगे, मेरा बेटा सुधर जाए, नहीं बोलते, नहीं बोलते, तो इसका मतलब है शारीरिक दुख कम तकलीफ देता है, मानसिक दुख ज्यादा तकलीफ देता है। और सबसे ज्यादा मानसिक दुख कौन दे रहा है, क्या कोई अजनबी आके दे रहे हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ कौन दे रहे हैं, हमारे घर के ही बंदे तो दे रहे हैं, कहीं बाहर जाके कोई कटोरा लेके किसी से मानसिक दुख मांगने जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर वाले ही हमसे पूरा सहयोग करते हैं इस मामले में, पूरा मानसिक हमें दुख देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं देते। सो बार बार हमें कदम कदम पर हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, आप में से कभी किसी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, कितने लोगों ने शर्मिंदगी झेली है आज तक, मैं तो रोज शर्मिंदगी झेलता हूं, कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है, मैं सोचता हूं यार मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा, मतलब कितना प्रयास करने पर भी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो मन को कचोट देती है ना, मादाएं कितनी मेहनत कर लें, बच्चे या जो हस्बैंड है बोलेगा ये क्या बना दिया, नहीं उनको क्या पता पूरी कमर टूट गई उसको बनाने में, लेकिन वो एक सेकंड में बोल देंगे ये खाने का मूड नहीं था, हम तो सोच रहे थे चलो पकोड़े बनाए होंगे, पकोड़े नहीं बनाए तुमने, मजा ही नहीं आया। हाँ क्या चीज, सुबह से पूरा दिन करके आ रही थी तुम, नहीं कितना टाइम लगता है, आप बना के दिखाओ, मन में कहती हैं वो, कई कह भी देती हैं चलो जमाना बदल गया है मॉडर्न। हाँ सो कदम कदम पर बार बार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तो मतलब क्या हम शर्मिंदा होने के लिए पैदा हुए थे क्या, क्या मतलब ऐसा क्या कर दिया हमने कि मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी हमें लगता है कि सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता भी है तो भी पूरा संतुष्ट नहीं कर पाता, और मिलता है तो स्थिर नहीं रहता, गायब हो जाता है, और बार बार शर्मिंदगी जो है वो हमेशा सामना करती रहती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ में, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम पराए घर में जबरदस्ती घुस के बैठे हुए हैं, अगर हम अपने किसी बहुत अच्छे रिश्तेदार या मित्र के घर चले जाएं, दो चार पांच दिन रहें, तो मैं दो चार दिन के लिए रहने आया हूँ, 15 दिन हो जाए तो क्या वैसे ही उसमें वो जोश और प्रेम रहेगा? बार बार कैलेंडर की तरफ देखेगा यार जा ही नहीं, नहीं। बार बार और वो हिंट देगा, अच्छा फिर काम वहां पे काम का हर्जा हो रहा होगा नहीं बोलते हैं ना, अरे भैया वो तुम्हारा, तुम यहाँ पर बैठे हो देहरादून में, वो दिल्ली में तुम्हारे काम का क्या हाल होगा, बच्चों का क्या हाल होगा? अरे सब ठीक है यार, सब ठीक है, मतलब यही आके पड़ गया नहीं। और फिर पहले दिन जब आप गए थे तो आपको शाही पनीर भी खिलाया उसने, दाल मखनी भी खिलाई, लच्छा पराठा भी खिलाया, गुलाब जामुन भी खिलाए, एक हफ्ते बाद वो मूंगी की दाल पे आ जाएगा नहीं, तो वो सिग्नल देगा कि जाओ यहाँ से जाओ। तो जितने भी हमें शर्मिंदगी यहाँ पे उठाने पड़ रही है, जितने हमें दुख यहाँ पे उठाने पड़ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब भगवान सिग्नल दे रहे हैं हमें कि भैया किसी और के घर में पड़े हुए हो, तो ये तुम्हारा घर नहीं है, कब तक यहाँ पर बेशर्मों की तरह पड़े रहोगे, बाहर निकलो और जाओ। लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो भगवान कह रहे हैं अच्छा अच्छा लग रहा है, तो भगवान उसको और ज्यादा स्वाद चखाते हैं, मूंगी की दाल भी गायब कर देते हैं, चटनी रह जाती है बिना नमक की। सो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि एक बार एक कैदी था, एक चोर था बहुत बड़ा, आराम से, अरे माता जी बिना बोले आप करो ना, इतना आराम से थोड़ा शांति से कीजिए प्लीज। सो एक कैदी को पकड़ के लेके, एक चोर को पकड़ के लेके गए राजा के पास, बहुत ही डकैतियां की थी, बहुत सारे लोगों को उसने तंग किया था, तो राजा ने कहा इसको नदी के पास ले जाओ और इसको पानी में डुबाओ इसको, और जब मरने लगे तो बाहर निकाल लो, एक सांस ले ले तो दोबारा उसको पानी में डुबाओ जब तक ये बोले नहीं कि मैं सुधर गया हूं। तो सिपाही ले गए उसको और उसको सिर पकड़ के उसका नदी के अंदर डुबो दिया, बहुत तड़पा वो, और उसको लगा प्राण छूटने वाले हैं, तो सैनिकों ने बाहर निकाला तो उसने कहा कितना बढ़िया लग रहा है। हम लोगों का यही हाल है, और जैसे ही उसने सोचा कितना अच्छा लग रहा है, फिर वापस पानी में डुबा दिया। सो हम लोग भी जो बिल्कुल हमें भी पकड़ के गर्दन से और पानी में डुबोया हुआ है हमें, हम बहुत तड़प रहे हैं और हल्का सा जैसे ही बाहर निकालते हैं, हम सांस लेने का मौका मिलता है तो हमें लगता है ये तो बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है, और उसके इंतजार में कि अगली बार कब ये स्वतंत्रता हमें मिलेगी, हम पानी में डूब कर तड़पते रहने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन भगवान ये बार बार जो भगवान हमें समस्याओं का सामना करवाते हैं, ऑफ कोर्स वो जो समस्याएं हैं हमारे कर्मों का फल ही है, भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में कि जितने भी कष्ट मिल रहे हैं मेरे अपने बुरे कर्मों का परिणाम ही है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने विशेष रूप से मुझे तंग करने के लिए, मैं तो बहुत मासूम व्यक्ति था, लेकिन मुझे तंग करने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और कई बार लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी इतनी मुझे तकलीफें आ रही हैं, तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप कभी, ये उसी तरह से है, आप कोई पिक्चर देखने के लिए सिनेमा हॉल गए, लेट हो गए, ट्रैफिक में फंस गए, आधा पौना घंटा लेट हो गए, आप अंदर घुसे तो सामने स्क्रीन पे चल रहा है कि एक बहुत ही मासूम व्यक्ति है, वो दौड़ रहा है बड़ी तेजी से, और उसके पीछे 100-200 लोग दौड़ रहे हैं, मारो मारो उसको, पत्थर ईंटें मार रहे हैं उसको। तो हम सोच सकते हैं यार कितने जालिम लोग हैं, इसको बेचारा इतना मासूम बंदा है, उसके पीछे भाग रहे हैं, मार रहे हैं, बकार में क्या जरूरत है। एक्चुअली में हमने वो पहले जो 45 मिनट की पिक्चर नहीं देखी, जिसमें कि बताया गया है कि उसके पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे चोरियां की हैं, डाके डाले हैं, लोगों की हत्या की है उसने, आज पकड़ में आ गया तो लोग उसको पकड़ने के लिए मारने जा रहे हैं। तो हम, अगर ये सच्चाई पता चल जाए तो हम सोचेंगे कि हाँ यार ठीक हो रहा है इसके साथ, नहीं? अभी हम, क्योंकि हमें हमारे पूर्व जन्मों के पापों के विषय में अब याद नहीं रहा हमें, लेकिन उसका फल हम जब भुगतते हैं तो हमें बड़ी परेशानी होती है, हम सोचते हैं यार कैसे, मतलब मैंने तो चींटी भी नहीं मारी, हालांकि ये दावा भी कोई नहीं कर सकता कि मैंने चींटी भी नहीं मारी, कोई ये दावा नहीं कर सकता, सबने चींटियां मारी होंगी यहाँ पे जितने भी बैठे हैं। सो अगर हमें अपने पूर्व जन्मों के जितने पाप हमने किए हैं अगर हमें पता चल जाए, तो हम रात को नींद नहीं आएगी, हम सोचेंगे कि भगवान तो बहुत ही कम सजा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सजा देनी चाहिए थी, ये तो बहुत कम है, मैं इतना दुष्ट व्यक्ति हूँ कि मुझे तो कोड़ों से मारना चाहिए था, भगवान ने तो चलो थोड़ा बुखार दिया, एक हफ्ता वायरल फीवर रहा, ठीक हो गए, चलो बात खत्म हो गई। लेकिन हमें भगवान के इन संकेतों को समझना चाहिए, हमें ये जान लेना चाहिए कि हम पराए घर में बहुत ही बेशर्मों की तरह पड़े हुए हैं, हमें यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, हमें प्लानिंग करनी चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो अब प्रश्न है कि वो प्लानिंग क्या है, यहाँ से हम बाहर निकलने की वो प्लानिंग क्या है? तो वो बाहर निकलने की प्लानिंग है कि हम पहले तो ये जान लें कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, कैसे हम इस, वो दरवाजा कहाँ है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं इस पूरे भौतिक जंजाल से, तो वो दरवाजा कौन सा है? वो दरवाजा है भक्तों का संग। जब हम भक्तों के संग में आएंगे तो भक्त जो है, आपने कभी कोई वो साइंस फिक्शन की पिक्चर देखी हो तो ऐसे दो व्यक्ति मिलेंगे, आपस में उंगलियां टकराती हैं तो एक गोला बन जाता है, उसमें से आप बाहर निकलो तो दूसरे लोक में पहुंच जाते हो, कभी देखिए आपने साइंस की पिक्चर ऐसी। सो भक्तों का संग वो दरवाजा है जिससे होकर आप पराए घर से निकलकर अपने घर में जा सकते हो, अपने घर में प्रवेश कर सकते हो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भक्तों का हमें संग मिलेगा कैसे, हम कैसे भक्तों का संग प्राप्त कर पाएंगे? तो भक्तों का संग हमें मिलेगा जब हमारे मन में भक्तों का संग करने की लालसा होगी। अगर इच्छा नहीं होगी भक्त आपके सामने मृदंग बजाते हुए निकल जाएंगे, आप उनसे बात ही नहीं करोगे। कितने जो है इस्कॉन की तरफ से कितनी रथ यात्राएं होती हैं, कितने हरि नाम निकलते हैं। विशेष रूप से इस वर्ष तो हजारों लाखों हरि नाम निकाले गए हैं क्योंकि 50 वर्ष हुए हैं इस्कॉन की स्थापना को, फिर भी करोड़ों लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोगों के सामने से भक्त निकल जाते हैं, लेकिन लोग उनकी तरफ देखते भी नहीं है क्योंकि उनके मन में उन भक्तों का संग लेने की इच्छा नहीं है। जब तक हम, पहली बात यह है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि मुझे इस भौतिक जगत में बार बार शर्मिंदा होना पड़ रहा है, मुझे बार बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस अनुभव से अगर ये भी सोचना बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है कि मैं बहुत परेशान हूँ इस भौतिक जगत में, लेकिन अगर हम भक्तों से, किसी के मुंह से भी हमने ये सुन लिया और एक बार को मान लिया कि हाँ हम परेशान हैं वाकई में, यहाँ पर ये अच्छे लोगों के रहने की जगह नहीं है, ये किसी और का घर है, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते, यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं हम, तो आपको उस समय जब ये अनुभूति होगी कि हम पराए घर में हैं, तो फिर आपको भक्तों का संग करने की इच्छा आ सकती है। उससे पहले भक्तों का संग करने की इच्छा आपके मन में नहीं आएगी, कितना भी हम प्रयास कर लें। कितनी परेशानी हो रही है। सो वेल, और आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, नहीं, आपको सहना पड़ेगा, तो ये भी शर्मिंदगी है ना। अगर यही हम सब वैकुंठा धाम में होते और जोर जोर से भगवान का कीर्तन कर रहे होते तो कौन आके बीच में हमें डिस्टर्ब करता। हम डिस्टर्ब इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम पराए घर में बैठे हुए हैं, नहीं। प्रभुपाद ने बार बार हमें ये बताया कि ये शरीफ लोगों के रहने की जगह नहीं है। जो जेल है, जेल में शरीफ लोग नहीं मिलते, जेल में चोर हैं या उचक्के हैं, खूनी डाकू यही लोग मिलेंगे, जेल में धर्मात्मा नहीं मिलेंगे। और ये भौतिक जगत जो है एक दुर्ग के समान है, एक प्रिजन हाउस है, जेल है, और इसकी जेलर कौन है? दुर्गा देवी। तो जो दुर्ग को संभाल रही है इसलिए उनका नाम दुर्गा है, और क्योंकि वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त हैं इसलिए उनका नाम वैष्णो, नहीं। लोग वैष्णो देवी भी बोलते हैं फिर भी समझते नहीं है कि वैष्णो का मतलब क्या है, विष्णु के दास। इतनी छोटा सा लॉजिक भी, छोटी सी बात भी समझने में लोग परेशान रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हैं दुर्गा देवी के अधीन, इस भौतिक संसार रूपी जेल के अंदर। यहाँ पे अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा कोई भी, यहाँ पे सारे चोर डाकू ही मिलेंगे। तो हमारे हित में है कि हम यहाँ से बाहर निकले। बाहर निकलने का एक ही तरीका है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम भजे। अगर हम भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करें, जोर जोर से हम भगवान से प्रार्थना करें, पूरे हृदय से भगवान को पुकारें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अगर हम जोर जोर से भगवान को पुकारें कि हे भगवान, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ या आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन ये शरीर मुझे आपकी सेवा करने में बाधा पहुँचा रहा है, आप प्लीज़ आप मुझे ऐसे स्थान पर ले जाएं जहाँ मैं निर्बाध रूप से, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के, अच्छे से आपकी सेवा कर सकूँ। और ऐसा स्थान भगवान का धाम ही है। तो जब हम भगवान को ये प्रार्थना करेंगे तो भगवान अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें वापस अपने धाम लेके जाएं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे से भगवान के दिव्य नामों का जप करें। और श्रील प्रभुपाद ने कहे कि कम से कम 16 माला का रोज जप करना चाहिए। जो व्यक्ति 16 माला का जप करेगा, शुरू में हो सकता है मन नहीं लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रयास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो आपका मन जप में लगना शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा, यहाँ पर इसको विराम देते हैं और ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता।